और फिर उनकी दूसरी क्या भागदत आई गई, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है। ये मर्ज क्या है? उलमा कहते हैं एक मर्ज तो है शक का, शक कि यकीन ही नहीं है कि ये अल्लाह की बातें सच्ची हैं। शक क्या इस चीज के अंदर, अल्लाह के पे, रसूल के ऊपर, आखरत के ऊपर, इस पैगाम के ऊपर कि यही सच्चा है, यही हमें निजात दिलाने वाला है। शक है, शक है। और मैंने आपको क्या बताया, बीमारी का इलाज शुरू में कर लिया जाए तो बेहतर है ना, हाँ उसको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। इसलिए अगर मेरे या आपके दिल में भी कभी शक आए तो शकूक को शुभात का इलाज कराएं, इलाज करें इनका, वरना ये बढ़ जाएंगे। हाँ पता नहीं मेरे दिल में ये बात आ रही थी, क्यों नहीं फिर इलाज करते? इलाज क्या है फिर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इलाज है कुरान, कुरान है इलाज, और इलाज है सालेहीन की सोहबत, अमल करने वालों की सोहबत, भलाई की बातों में रहना और बुराई की बातों से दूर रहना, ये है इलाज। और अगर इलाज ना किया तो मैंने आपको क्या बताया, मर्ज बढ़ जाएगा, और जब बढ़ता है ना तो फिर वो बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये बीमारी है, दूसरी उलमा कहते हैं दूसरी बीमारी बुजदिली थी इनकी, मुनाफिकीन के अंदर बुजदिली होती है, जब भी तो वो अब दीन के लिए खड़े होने को तैयार नहीं होते, जब भी तो इसके लिए कुछ लगाने को तैयार नहीं होते। एक तो ये शक है ना, यकीन ही नहीं है, पहले आया था ना बात, हम बिल आखरत यूकिनून, यकीन रखने वाले आखरत पे। देखिए जब इंसान को शक हो जाता है ना, वो कोई काम सही से नहीं कर सकता। अब आपको अगर शक है, पता नहीं ये तो इसका कुछ अल्लाह के यहाँ कोई सवाब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो आपसे कुछ दिया ही नहीं जाएगा अल्लाह के रास्ते में, पता नहीं मिलना भी, अब अल्लाह जाने, पता नहीं कयामत है कि नहीं है, तो कहाँ दिया जाएगा आपसे कुछ, क्या पता हिसाब किताब हो ही ना। शक भी इंसान का ईमान को खा जाता है, और बुजदिली भी, कि जब इतनी बुजदिली हो कि इंसान हाय यहां पे कुछ लगा दिया तो क्या होगा, यहां पे कुछ चला गया तो मेरे से चला जाएगा, बुजदिल है, कोई किसी के लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं है कि अल्लाह रसूल की जो बात जिसका मुझे यकीन है, जो जब यकीन होता है तो तभी इंसान स्टैंड लेता है ना, यकीन ही नहीं तो पहली तो वो बीमारी, फिर दूसरी ये बीमारी। आप आज भी देख लें, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुसलमानों पे फखर करते हैं, मुसलमान होना एक ऑनर समझते हैं, सीना ठोंक के कहते हैं मैं मुसलमान हूं, जो करना कर लो, मैं दिखता भी मुसलमान हूं, मैं बोलता भी मुसलमान हूं, मैं चलता भी मुसलमान हूं, मैं उठता बैठता भी मुसलमान, मैं बस मुसलमान हूं, मैं कुछ और कहलवाना नहीं अपने लिए पसंद करता, ऊपर से नीचे तक वो मुसलमान है, अंदर बाहर मुसलमान। दूसरी तरफ आप अपने माशरे में भी ऐसे लोग देख लेंगे, वो कैसे होते हैं जिनको इस्लाम के लिए कुछ भी लगाना कुछ भी करना लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, कहते हैं देखो ईमान तो दिल में होता है ना, अब इतना भी क्या ईमान है कि हमें इसको जाहिर भी करने लगे, जरूरी है कि हम बताएं कि हम मुसलमान हैं, जरूरी है हम जाहिर दिखाएं कि हम मुसलमान हैं, नहीं भाई अंदर ही रखो अपना, खामोश रहो, इतने एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं कि लोगों को पता चले कि मुसलमान, अगर हम 21वीं सदी में रहते हैं हमें जमाने हालात के मुताबिक भी तो चलना है। ये जो बुजदिली है ना, ये मुनाफिकत की एक चीज है, या जोफे ईमान है, कमजोरी है ईमान की। कहते हैं ज्यादा भी ना चलो, ज्यादा भी ना इस दीन के ऊपर चलो, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहना चाहिए ना, ये तो नहीं कि, और बैलेंस्ड वो किसको कहते हैं, ये तो दीन है ही बैलेंस्ड, ये तो इत्तदाल पे ही है, वो बैलेंस किसको कहते हैं, कहते यानी थोड़ा करो थोड़ा ना करो, बस सारा नहीं करने की जरूरत इस दीन की, ठीक है तुम्हें बहुत करना है ना नमाज पढ़ लिया करो, ठीक है तुम नेक हो गए, अब इसमें भी किससे भी ज्यादा जाने की, भाई मैंने हर चीज ही माननी है, ये क्या बात हुई, कुछ देखना भी चाहिए ना। और इस तरह से फिर वो चलते हैं, देख देख के चलते हैं ना, लेकिन भी ऐसे तो कहीं ऐसा ना हो कि जॉब के ऊपर कोई मसला हो, कहीं ऐसा ना हो कहीं पता चल जाए किसी को मुसलमान है तो फिर देखिए वो हमसे वैसे तो नहीं मिलेंगे ना, कहीं हमसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, कहीं कोई हमें बैकवर्ड ना समझ ले,
मुसलमान मुल्कों में तो ये होता है कि वहां तो सबको ही पता है मुसलमान ही, लेकिन ये प्रॉब्लम होता है, हाँ हमें कोई बैकवर्ड ना समझ ले, हमें कोई हकीर ना समझ ले। हाँ एक इस तरह से जाऊंगी तो जितना अपने आप को दिखा सकूं कि मैं, मेरा इस्लाम से कुछ ज्यादा ताल्लुक नहीं, उतनी मैं मॉड स्क्वाड कहलाऊंगी। और जितना मेरी जुबान पे कहीं बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर होगा तो कहेंगे ये पता नहीं कैसी दकियानूसी सी बैकवर्ड सी औरत है, जाहिल सी है। यही होता है ना। तो असल में तो क्या है, अपने अंदर खौफ होता है, किसी को पता चल गया हम मुसलमान हैं क्या होगा, आए कुछ ना हो जाए, बच्चों में भी वो फियर डाल देते हैं, कहीं वो ना शो कर दें कि हम मुसलमान हैं, कहीं कोई हज उमरे की बात ना मुंह से निकल आए, कहीं कोई काबे की बात है, कहीं मैं नमाज पढ़ने का तो मैं कह भी नहीं सकती, उनको पता चल जाएगा ये मुसलमान है, मेरी प्रमोशन ना रुक जाए, मुझे बुरा ना समझे, मुझे एक्सट्रीमिस्ट समझेंगे, मेरी पीआर खराब हो जाएगी। अब सारा जोर इस पे होता है कि बस हम इस्लाम से तो हमें, हम खुद भी कई चीजों को ना बस सही नहीं समझते, ये ना बस मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं। तो ये जोफे ईमानी जरूर है, अगर मुनाफकत नहीं है तो मुनाफकत तक ले जाती है, फिर मेरे यहां तक ठहरती नहीं है ना, फिर आगे चलती है ये जोफे ईमानी, खास तौर पे आप इसका इलाज ना करें तो। और इंसान फिर यही यही खौफ हमारे अंदर होते हैं ना, हाय मैं मुल्लानी ना कहलाऊं, हाय वो कोई मुझे कहेंगे कि ये क्या तुम हो गई हो, ये तुमने क्या शुरू कर दिया है, तो बस फिर इसलिए मैं देखें, ये फिर हमारे अपने ही खौफ है ना। तो ऐसे अमराज, इनको मर्ज कहा गया, ये बीमारी है, और जब बीमारी होती है वो जिस्म को क्या करती है, खा जाती है, इसी तरह ये निफाक का मर्ज ईमान को चाट लेता है और इंसान को पता भी नहीं चलता, ये यहीं तक थोड़ी रहता है, मैंने आपको बताया ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ता रहता है, इंसान ईमान से खाली तो फिर वो जहां जाता है जिस मजलिस में बैठता है वहां पे बुराइयां शुरू कर देता है, हाँ इस्लाम की तो ये बातें हमें समझ ही नहीं आती ये तो, और अपने आप को समझता है मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरा नॉलेज इतना है, मैं तो अब दीन की तह में पहुंच के देखो जरा मैं इनकी असलियत निकाल के बाहर ले आया, मेरा खुद को बहुत बड़ा अकलमंद समझता है वो, क्योंकि जब दीन के ऊपर वो तान करने लगता है, दीन में बातें निकालने लगता है और उसमें निकालता है कि ये बुराइयां इसमें, ये खराबियां, ये इसमें लॉजिक ही नहीं है किसी बात की, ये क्या बातें करते, जब ऐसी बातें करने तो दलेर हो जाता है, दीन पे भी बात करने से नहीं चूकता फिर तो, पहले तो वो शुरू में अपने अंदर था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ये जरासीम फैलाना शुरू कर देता है, जहर दूसरों में भी डालता है, पॉइजन करता है उनको भी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, जब कोई अपना इलाज खुद ही नहीं करना चाहता अल्लाह भी फिर उसको उसके मर्ज में बढ़ाता जाता है, फिर मैंने आपको क्या बताया, बढ़ता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है, इलाज करता तो फिर था ना, इलाज की फिक्र करता, उसको ये होती कि ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, और इंसान को खुद पता होता है कि क्या चीजें चल रही हैं उसके अंदर, लेकिन कुछ लोग इलाज भी नहीं करना चाहते, उस इलाज को भी वो समझते हैं क्यों हम तो बिल्कुल सही हैं, अगर कोई इंसान अपनी बीमारी माने ही ना तो फिर उसका इलाज कौन कर सकता है, तो अल्लाह भी फिर उनको ज्यादा कर देता है बीमारी में। आपने देखा है जब कोई नेकी में बढ़ना चाहता है ना, अल्लाह उसके लिए नेकी के रास्ते खोल देता है, उसको बढ़ाता है उस रास्ते में, वो कोई कुफर की तरफ जाना चाहता है, हठधर्मी है, जिद है, इनाद है अल्लाह के पैगाम से, तो अल्लाह उसको उसमें बढ़ा देता है, उसकी मोहर ही लगा देता है, अब बढ़ते जाओ इसी रास्ते पे, जिसके दिल में मर्ज है वो मर्ज में ही रहना चाहता है, अल्लाह उसको उसमें बढ़ा देता है, जो आपकी तलब और तड़प होगी अल्लाह फिर आपके लिए वही रास्ते खोलेगा। अगर कोई एलर्जिक है इस पैगाम से कि वो अल्लाह का नाम सुनना भी है, फिर यहाँ पे दर्द शुरू हो गए, फिर यहाँ पे ये, जब कोई ऐसे हो तो फिर बताएं कि उसका मर्ज बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा, तो इन अल्लाह नहीं किसी के साथ जुल्म करता, इंसान के अपने आमाल होते हैं जिसके नतीजे में अल्लाह मुहर लगा देता है, या बीमारी है तो अल्लाह बीमारी को बढ़ा देता है, वलहुम आदाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दर्द वाला। और दर्द क्या चीज होती है, ये सिर्फ दर्द, टॉर्चर नहीं, दर्द। कितनी दर्द का लफ्ज ही ना, कि मेरे सर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, कितना इंसान को तड़पा देता है। कान में दर्द, दांत में दर्द, और जब कहा जाए अजाब वो जिसमें दर्द है, तो सोचें जरा कि वो कैसा अजाब होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। बीमा कैनू यक्सीबून, क्यों उनको दर्दनाक अजाब क्यों है? बीमा कैनू यक्सीबून, वजह इसके कि वो क्या करते थे, झूठ बोलते थे। अच्छा, झूठ बोलना इतनी बड़ी बात होती है? हाँ, उनका झूठ क्या था? एक तो झूठ होते हैं ना जो कि आम झूठ बोले जाते हैं, वो भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं, लेकिन ये झूठ क्या था कि ये कहते हैं हम ईमान वाले हैं और इनके दिल में कुछ भी नहीं है, धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह रसूल को धोखा देते हैं, ईमान वालों को धोखा देते हैं, तो इनको, इनके लिए अपना ही लिए वबाल है। ये सोचते हैं धोखा दे देंगे, बड़ा मजा आया, लो वो इस धोखे से खुद ही धोखा खा गए। और यखदाउना क्या था? धोखा देने में कामयाब हो जाना। मैंने युखादिउना का बताया था ना कि ट्राई करना लेकिन कामयाब नहीं होना। यखदाउना में धोखा दे दिया, कामयाब हो गए, तो उन्होंने धोखा अपने आप को दे दिया, उन्होंने किसी और को नहीं दिया, अपने आप को सिर्फ दिया। यही उनका झूठ है, ये जो झूठ था ना, आमन्ना बिल्ला व बिल्योमिल आखिर, ये झूठ था इतना बड़ा। किसी के साथ झूठ बोलना भी बुरा है, लेकिन कोई अल्लाह के सामने प्रिटेंड करके दिखाए कि मैं ऐसे हूं और मेरी इन बातों से अल्लाह भी कायल हो जाएगा, ये कितनी बड़ी हमाकत है। अपने आप को ही पागल बना रहा है ऐसा इंसान। तो मुनाफिकों की आपको पता है जो 3 निशानियां सबको पता होंगी, हदीस में आती हैं, कि जब बोलता है तो झूठ बोलता है। आप उसकी ना इन निशानियों से ही समझ जाएंगे कि ऐसा इंसान मुनाफिक ही हो सकता है। झूठ में भी क्या होता है? खिलाफ हकीकत बात, बात कुछ है बना कुछ और लिया। मुनाफिक का भी क्या है? अंदर कुछ है बाहर कुछ और है, झूठी जिंदगी गुजार रहा है ना, झूठी जिंदगी ना। अंदर जो है वो बाहर जाहिर नहीं करता, मेरे अंदर तो शक व शुभात है, मैं तो इस दीन को पसंद ही नहीं करता, मैं तो नहीं इनके साथ रहना चाहता, तो मैं सिर्फ मुफाद के लिए हूं, मैं क्या करूं और मरता क्या ना करता तो इनके साथ ही लग गया, वो अंदर को बाहर नहीं ला रहा, झूठ है ना। फिर वादा करता है तो तोड़ देता है, और इसने भी क्या किया, यहाँ पे भी वादा किया तो तोड़ दिया, ये भी एक वादा ही है ना। जब इंसान कलमा पढ़ता है कि मैं सिर्फ अल्लाह को एक अल्लाह मानता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है, ये एक वादा है, और इंसान उस वादे को तोड़ देता है। फिर तीसरी चीज, अमानत में खयानत करता है, जिंदगी भी अमानत है और जो उसने कलमा पढ़ा वो भी अमानत है, उसमें खयानत की। फिर आप देखें एक और चौथी निशानी भी है मुनाफिक की, एक और रिवायत में आती है वो, कि जब झगड़े पे आता है तो फट पड़ता है। जब झगड़ा करता है ना, इजा खसमा फजरा, जब झगड़ा करता है तो यानी उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, फट पड़ता है। आपने देखा है कुछ लोगों को आप ऐसे मिले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी उनको झगड़े के वक्त देख लें तो पहचाना ही नहीं जाता, अल्लाह ये वही लोग हैं, ऐसे गालम गलोच भी है और ऐसे मुंह फट हैं कि उनकी वो जुबानी निकलती हैं कि जो कभी इंसान सोच ही नहीं सकता। तो ये मुनाफिकों की निशानियां हैं। अगर इनमें से किसी के अंदर एक निशानी है तो वो उतने दर्जे का मुनाफिक है, दो है तो उतने दर्जे का मुनाफिक है, चारों की चारों है तो उतना ही मुनाफिक है। हमें देखना है कि क्या ये निशानियां मेरे अंदर तो नहीं है, क्या झूठ है मेरी जिंदगी। और झूठ सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा मैं दर्जी के पास गई और मैंने कहा मेरी तो फ्लाइट है कल, मुझे जल्दी कपड़े चाहिए, हमारे यहाँ तो शादी है, जल्दी चाहिए बस, और अभी फ्लाइट में हफ्ता पड़ा हुआ है। सिर्फ ये झूठ नहीं है, और सिर्फ ये झूठ नहीं है कि हम जाके बाजार में कहें कि आए मैं तो ये कपड़ा फलां दिन इतने का लेके गई थी और फलां दुकान वाला तो इतने का दे रहा है और तुम इतने का दे रहे हो, सिर्फ ये झूठ नहीं है। और सिर्फ ये झूठ नहीं है कि हम किसी को कह दें हाँ मैं लेट हुई थी, वो असल में क्या हुआ ट्रैफिक बहुत ही, हालांकि घर में से ही लेट निकले थे, अब क्या करें। सिर्फ ये झूठ नहीं है कि हम किसी को कह दें कि हाँ मैं आपके हाँ इसलिए नहीं आ सकती कि उस दिन मेरी फलां फलां चीज है, फलां फलां अपॉइंटमेंट है, हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं थी। सिर्फ ये झूठ नहीं है, खुशामद भी झूठ है। जब आप झूठी किसी की तारीफें करें आपके लिए दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बस झूठी, हाँ तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमें खाना तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया, आए तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है, तुम तो कैसी, ये खुशामदी चीजें, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। किसी के सामने कुछ दिखाना और कुछ और होना पीठ पीछे, ये भी झूठ है, ये सभी झूठ है। तो झूठी जिंदगी से निकलना है कि झूठ मुनाफिकत की निशानी है। और खुद को देखना है कि जब झगड़ा होता है, जब हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है, उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होती है? अब तो कोई देख नहीं रहा, ना कोई टीचर देख रही है, ना कोई और देख रहा है, अब तो जो मर्जी करूं घर में, फिर उस वक्त मेरे मेरे कैसी मुंह फट होती है, मेरा क्या हाल होता है मेरी जुबान का, और उस वक्त कोई परवाह नहीं होती, कुछ नहीं याद होता कि क्या पढ़ा क्या सुना, कुछ नहीं याद। तो ये मुनाफिकीन की निशानियां, जो इतना अगली करेक्टर है, उसकी कोई भी निशानी हम अपने अंदर चाहेंगे कि हो? अगर कोई भी निशानी होगी तो वो हमें भी क्या बना देगी, बदसूरत, अल्लाह की नजर में बहुत बदसूरत बना देगी। ऐसे लोगों को इंसान भी पसंद नहीं करते, इंसानों में भी उनकी कोई कदरों कीमत नहीं होती, कोई वक़्त नहीं होती, चाहे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों में अपनी वैल्यू रखें, अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में मेरी नाक ना कटे, लोगों में मेरी इज्जत रहे, लेकिन ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। और आप देख लेंगे मदीना के माशरे में भी लोग ऐसे लोगों को कुछ नहीं, मतलब उनको साफ पता चल रहा था कि ये इनमें मुनाफ़िकत है, कोई कुछ कहता नहीं था उनको, मुनाफिक कह के नहीं पुकारते थे, लेकिन उनकी वो वैल्यू नहीं थी जैसे मोमिनों की थी। तो जब इंसान अल्लाह के साथ सच्चा होता है ना, और लोगों के साथ सच्चा होता है, तो खुद ब खुद अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। और झूठ, एक झूठ के साथ 10 झूठ आते हैं। झूठ से जिंदगी को पाक करना है, वादा खिलाफी से जिंदगी को पाक करना है, अमानत में खयानत करने से पाक करना है, और झगड़े के वक्त फट पड़ने से अपने आप को पाक रखना है। वह इदा कीला लहुम ला तुफसिदु फिल अर्ध, जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना करो, कहा जाता है मतलब कौन कह रहा है, यानी इसका मतलब है कि कोई लोग इनको कहते हैं, कोई लोग इनको कह रहे हैं तुम जमीन में क्यों फसाद करते हो, फसाद क्या था, फसाद यही हम सोचते हैं फसाद क्या है, हम सब सोचते हैं फसाद है को पता नहीं कोई खून खराबा कर रहे होंगे, नहीं, फसाद का मतलब है अल्लाह की नाफरमानी, फसाद का मतलब है गुनाह, इसको फसाद कहा गया है। हम फसाद अपना माना लेते हैं ना, वो भी एक फसाद की किस्म हो सकती है, लेकिन असल माना यहाँ पे फसाद का क्या है, अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ना, अल्लाह की नाफरमानी करना। ये जमीन अल्लाह की है, यहाँ पे अल्लाह ही का कानून चलना चाहिए, अल्लाह ही का हुक्म चलना चाहिए, चाहे हमारी अपनी जात है, अपनी इंडिविजुअल जिंदगी है, या मुल्क मुल्क है हमारे, या कोई भी जगह है, वहां पे क्या चलना चाहिए, अल्लाह का कानून। लेकिन जब इंसान नाफरमानी पे उतर आता है, सरकशी पे उतर आता है, गुनाहों में पड़ जाता है, तो वो एक फसाद कर रहा है, और वो माशरे में भी एक ऐसी फिजा पैदा कर देते हैं कि एक बुराई करता है ना, उसको देख के चार और करने लगते हैं, उन चार पांच को देख के और चार पांच करने लगते हैं, इस तरह से बुराई फैलती है। आप देखते होंगे कितनी जल्दी फैलती है, आप देखते हैं लोग बात करते हैं फलां जगह पे, फलां की शादी में देखा तो उन्होंने ऐसे किया था, हम भी चलो ऐसे करते हैं, फलां की वीडियो में देखा तो वो ऐसे कर रहे थे, हम भी चलो वो करते, फलां ने देखा था ये कैसा ये पहना हुआ था, हम भी ऐसे। देखें जो अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं ना, ये फिर माशरे में इस तरह फैलते हैं। तो फसाद मत करो, यानी अल्लाह की नाफरमानी मत करो, जिन कामों से अल्लाह ने मना किया हुआ है उन से मना हो जाओ, ये जब उनको कहते थे। तो आगे से वो कहते थे कालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम तो इसलाह करने वाले हैं, हम का फसाद करने वाले हैं, हम तो इसलाह करते हैं, यानी जब इनको कहा जाता भाई चलो अब अल्लाह के रास्ते में कुछ लगाओ, चलो फिर किसी गजबात के लिए निकलो, तो आगे से इनका काम क्या होता था, ये एक फसाद है कि जब वो नहीं आ रहे, जब वो पीछे रह रहे हैं, कहते थे देखो हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि मिलजुल के रहो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है उनको उनकी जगह पे छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है ये उनको कहने की कि भी इस्लाम ले आए या लड़ने भिड़ने की, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अपने अपने काम करो, अपनी जिंदगी से मतलब रखो। तो हम तो पीस मेकर हैं, हम तो इसलाह करने वाले हैं, लड़ाई झगड़े तो तुम करते हो, समझ आई ना बात। और फसाद क्या होता है? और फसाद है जो माशरे के अंदर जितनी ये बुराइयां ना इंसाफियां है ना, इनको भी फसाद कहा जाता है, ना इंसाफी और जुल्म, ये फसाद है असल में। मसलन क्या था, यतीम का माल खा लेना, बुत परस्ती करना, औरतों को कोई वक्त ना देना, विरासत में से खा लेना, ये सब फसाद है, करप्शन फसाद है। आज देखें जिस इस्लाम में इस फसाद को बदलने का है, वो ही लोग आज दुनिया में फसाद करने वाले बन गए, वो ही मुसलमान ये फसाद फैलाते फिर रहे हैं। सारी जो नाइंसाफियां हैं ये इनमें मुसलमान इन्वॉल्व है। तो फसाद हमने तो खत्म करना था, हम खुद ही फसाद करने लगे। तो वो कहते थे हम तो हिकमत से चल रहे हैं, मसलहत से चल रहे हैं, तो हम कहाँ फसाद कर रहे हैं। उनको कहा जाता था तुम देखो तुम फसाद कर रहे हो, फसाद क्या है, अपनी जगह से कोई चीज हट जाना। और अल्लाह के हुक्मों को जब भी तोड़ा जाता है ना माशरे के अंदर, किसी माशरे में अल्लाह के हुक्म को तोड़ा गया, मिसाल के तौर पे शादी एक हलाल जरिया है और उससे औलाद होनी चाहिए, लेकिन जब इस कानून को ही अल्लाह के तोड़ दिया गया और निकाह नहीं किया और उसके बगैर ही औलाद हो रही है, तो ये क्या फसाद है ये, और ये माशरे में क्या करेगा, एक कियोस क्रिएट करेगा, एक बदअमनी, एक बेचैनी, एक ब्रोकन फैमिलीज, और आगे से आगे कितने फसाद फिर पैदा होते हैं, उन बच्चों का क्या होता है, उनकी तरबियत का क्या होता है, फिर वो आगे क्या क्रिमिनल्स बनते हैं। आप देखेंगे जिन कम्युनिटीज के अंदर ये चीज ज्यादा है उनके अंदर जराइम भी ज्यादा है। इसी तरह एक और चीज एग्जाम्पल ले लें फसाद की, जब अल्लाह के कानून को तोड़ा गया, अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया, लेकिन जब अल्लाह के कानून को तोड़ दिया गया तो फिर क्या हुआ, अमीर अमीर से अमीर तर, गरीब गरीब से गरीब तर, उसका नतीजा क्या निकला, चोर बाजारी, लूट मार, डाके, लोग एक दूसरे से लूट कसूट कर रहे हैं, इधर से लो ये क्यों ज्यादा पा रहे हैं, मेरे घर में रोटी नहीं है और ये देखो जरा इसके कुत्ते भी रोटी खा रहे हैं। तो वो फिर क्या करेगा, कत्लो गारत भी होगा, किसी को मारेगा दाड़ेगा, कहीं गुस्सा भी निकालेगा, करप्शन भी होगी, कोई कहेगा यहां से नहीं मिलता तो यहां से ले लो, इनसे लूटो किसी तरह, फिर ये सभी चीजें होंगी ना, फिर मुल्क भी मकरूज होंगे, फिर उन मुल्कों में क्या हालत हो जाएगी गुर्बत की। तो अल्लाह का कानून जब टूटता है तो एक जगह नहीं इफेक्ट आता, वो थ्रू आउट इफेक्ट आता है, पूरे माशरे में वो फैलता है फिर। तो अल्लाह के कानूनों को तोड़ना फसाद है, अल्लाह की नाफरमानी है, फसाद है। तो फसाद फिल अर्द मत करो। अब उनका फसाद क्या था कि जब नबी अलैहिस्सलाम कोई बात कह रहे हैं तो वो सुन ही नहीं रहे, मान नहीं रहे, और उल्टा जब उनको कहा जा रहा है कि मत करो ये फसाद, मत ये नाफरमानी करो, तो अपने गलत काम को कहते हैं हम तो मुस्लिम हैं। तो इसका मतलब मुनाफिक की एक और क्या निशानी है कि वो एक तो जमीन में खुद फसाद करने वाले होते हैं, यानी तोड़ते हैं अल्लाह के हुक्मों को, नंबर टू क्या करते हैं, अपने गलत काम को सही समझते हैं, यानी गलत करेंगे और कहेंगे कि अच्छा है। और शैतान के बारे में भी जिक्र कुरान में आता है कि वो मुजयन करता है बुराइयों को इंसान के लिए, और ये वो ही कर रहे होते हैं कि इनको इनके बुरे काम अच्छे लगने लगते हैं, यानी शैतान इनको दिखा रहा है जैसे वो उसको वैसे लगने लगते हैं, उसको खूबसूरत लग रहे हैं वो काम, वो कह रहा है मैं तो मुस्लिम हूं, मैंने कहां फसाद किया, फसाद तो तुम कर रहे हो, समझ आई बात। और वो बुराई को भलाई समझ रहा है। कितनी दफा ऐसे होता है कि गुनाह के काम हैं, हमें पता है ये अल्लाह की नाफरमानी है, उसको हम अच्छा समझने लगते हैं, उसी को हम कहते हैं ये तो अच्छी चीज है, और लोगों भी कहते हैं तुम भी ऐसे करना, और खुद भी वही करते हैं। क्या उस वक्त हमें नहीं शऊर होता कि ये अल्लाह की नाफरमानी है जो मैं कर रही हूं, और इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, बेशुमार है, और हम उन पे खुश होते हैं, अच्छा समझते हैं उनको। आप लोगों के जहन में भी जरूर कोई आ रही होंगी मिसालें, मैं देना नहीं चाहती क्योंकि फिर वो हो जाता है कि भी बार बार एक बुराई को ना ही मेंशन किया जाए, लेकिन हर एक को पता है, बात सिर्फ समझने की क्या है, बुराई को भलाई समझने लगना, फसाद कर रहे हैं और कह रहे हैं हम मुस्लिम। तीसरी बात क्या पता चली साइकिन की, गलती को नहीं मानते, किस कोई बता रहा है और साफ पता चल रहा है वो फिर भी अपनी गलती को नहीं मानना, हम तो मुसले हैं, हम तो इसलाह करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह का क्या क्या फैसला है, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, यही तो फसाद करने वाले हैं लेकिन ये शहूर ही नहीं रखते, इनको इस बात का समझ ही नहीं है। जब फिर क्या बात पता चली कि मुनाफिक कैसा होता है, ना समझ, उसको समझ ही नहीं है, ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, हम पढ़ाई लिखाई का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, समझ भी, ये भी एक इंसान की इतनी सलाहियत होना कि वो समझ ले कि ये मेरी गलती है, ये भी बहुत बहुत कम ही किसी को मिलती है, ये शऊर होना, समझदारी, ये शऊर से खाली होते हैं, सेंस नहीं होती इनको। वईजा कीला लहुम, और जब कहा जाता है इनसे आमिनू, ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, वो तो कहते हैं हम पहले ही ईमान लेकर आए हैं, नहीं, कमा आमन अन्नास, वैसा ईमान लेकर आओ जैसे लोग ईमान लेकर आए, वो कौन सा ईमान है? असल में इनको ये नहीं कहा जा रहा जैसा वो मुहाजरीन ईमान लेकर आए हैं, जैसा अबू बकर सिद्दीक और उनका ईमान है, अन्नास लोगों का ईमान, लोग जैसे, इसका मतलब है कि माशरे के अंदर सब लोग कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर रजी अल्लाह तआला जैसे नहीं थे, कोई सभी अली और उस्मान नहीं थे, तो सभी हमजा और तलहा नहीं थे, आम मुसलमान थे ना। अब देखिए ना, आप कोई सहाबा का तो पढ़ते हैं जो जलीलुल कदर है, ऊपर के दर्जे के हैं, जो अशरा मुबशरा है, कुछ उनसे नीचे हैं, कुछ उनसे, कोई आम मुसलमान भी थे उस माशरे में, तो उनको कहा जाता है जैसे लोग ईमान लेकर आए, जैसे आम लोग जो सहाबा कराम जैसे, जो वो कोई बहुत वीआईपी ईमान की नहीं भी कही जा रही, तुम आम ही ईमान ले आओ जैसे आम लोग, कम अज कम सच्चा तो है ना उनका ईमान, कोई साबिकून अलवलून बनने को नहीं कहा जा रहा, मगर आम लोगों जैसा ईमान ले आओ। कालू, वो कहते अनुमिनु, तुम ये बताओ क्या हम ले आए ईमान, कमा आमन सुफहा, जैसे सुफहा ईमान लेकर आए, बेवकूफ लोग ईमान लेकर आए, बेवकूफ किसको कह रहे हैं, ये उन लोगों को जो सहाबा हैं, जो वो लोग हैं जो कि सच्चे ईमान वाले, क्यों उनको क्यों बेवकूफ कह रहे हैं? सुफहा का मतलब क्या होता है? सुफहा वो होते हैं जिनको मैंने बताया ना, अपने नफे नुकसान का कुछ नहीं शऊर होता, उनको नहीं समझ होती कि भाई मिसाल के तौर पे आज की दुनिया में किसको अक्लमंद समझेंगे, जिसको पता है भाई कल को कुछ जरूरत पड़ सकती है, अपनी सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट्स कोई यहाँ की हुई है, कोई वहां की हुई है, ले लेके रखी हुई है ताकि कभी कोई वक्त हो तो फिर वो उसको बेच के हम अपना करें, उसको हम समझते हैं बड़ा अक्लमंद है। और जिसको अपने फ्यूचर की नफे नुकसान का कोई एहसास नहीं होता, हम कहते हैं ये बड़ा बेवकूफ है, तो वो कहते थे ये बेवकूफी तो है, देखो जरा मक्का में अच्छे भले रहते थे, वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक कितने मालदार थे, आपको पता है वहां पे इतने मालदार थे, उनका बिजनेस था, और सब छोड़ छाड़ के देखो बिल्कुल होमलेस होके रह गए, यहाँ पे रेफ्यूजी बन गए, यहाँ पे आके, चलो रेफ्यूजी ना सही, इमिग्रेंट तो बन गए ना, नई जगह पे आके, और कोई घर ना बार ना कुछ, देखो सर तो ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है। उस तो उस्मान को देखें, वो कितने मालदार थे वहां, और यहाँ पे आए खाली हाथ। अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखें, वो भी बहुत मालदार थे, तो क्या किया इन्होंने, और यहाँ पे भी आके जो होता है लुटाते जाते हैं, लुटाते जाते हैं इस्लाम के, पर ना कोई अपने बच्चों के लिए रखते, ना घर बार का देखते, ना कुछ है, और फिर वैसे भी निकल रहे हैं गजवात पे, जंगों पे निकल रहे हैं, कभी बाग तैयार खड़े हैं, कभी कुछ है, कभी अपने घर बार का भी तो ख्याल रखना होता है, अपनी कोई जॉब होती है, बिजनेस होता है, उसका ना हम देखें, वो बस निकल पड़े हैं, ये तो बेवकूफ है, हम इनकी तरह ही मान लेकर आए कि बस सारा कुछ इस्लाम ही इस्लाम है और कुछ नहीं, हर चीज इस्लाम पे कुर्बान कर दी इन्होंने, तो उनको तो ये बड़ी बेवकूफी लगती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये दुनिया का जो फायदे हैं इनको छोड़ दें हम, या हम अपना दुनिया का जरा सा भी नुकसान कर दें, हमारे जॉब में कोई नुकसान हो जाएगा, हमारे बिजनेस में कोई नुकसान हो जाएगा, हमारे हमारे माल में कोई कमी आ जाएगी, हम क्यों लगाएं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफाउ वलाकिन ला यालमून। असल में तो सुफा ये खुद है, ये खुद बेवकूफ है, इसलिए कि इनको क्या पता वो कितने बड़े सौदे कर रहे हैं। इनको तो अपनी बेवकूफियां कयामत के दिन पता चलेंगी ना। इनको तो ये जो धोखा ये सोचते थे दूसरों को दे रहे हैं, इनको अपना धोखा तो उस दिन खुलेगा कि हम कितने धोखे में थे, हमने तो अपने आप को धोखा दिया, और हम कितने बड़े बेवकूफ थे। इन्होंने तो अकलमंदी की क्योंकि इन्होंने आखरत के लिए लगा लिया, हम है बेवकूफ, लेकिन इनको इल्म ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी आप देखें लोगों में बेवकूफ समझा जाता है उसको जो अपनी आखरत बनाने के लिए कहीं अपनी दुनिया की जरा भी कुर्बानी दे दे। मसलन हम कई दफा मिसालें देते हैं, अच्छा भला नॉर्मल था, फिर उसके बाद बस ऐसा दीन में लगा, ऐसा बस उसने बस यही काम पकड़ लिया, कहते नहीं ऐसा। और ये पढ़ना पढ़ाना, कोई जॉब करें, कोई कुछ करें, कुछ चार पैसे आए, ये क्या भाई पढ़ने बैठ गई है कुरान और ये कर रही है ये कर, ये तो बेवकूफी समझी जाती, ये तो समझी जाती है कि क्या हमाकत है क्या। आज भी ऐसा नहीं है, सोच सेम ही है, सोच सेम है। आज भी कई लोग इस्लाम के नाम पे फसाद करते हैं और वो कहते हैं तो हम तो बड़े रिफॉर्मर्स हैं, हम तो इसलाह कर रहे हैं, हालांकि वो फसाद करते हैं, खून खराबा करते हैं, अमनो चैन खत्म कर देते हैं, और वो इसलाह कर रहे हैं, अपने आप को कहते हैं इसलाह। आज भी ऐसे अड्डे हैं जहां पर शिर्क किया जाता है और उनको कहें कि ये फसाद कर रहे हो तुम, कि लोगों को तुमने किस तरफ लगा दिया, अल्लाह रसूल के नाम के सिवा तुम उनको किधर पीरी फकीरी के अंदर और किन लोगों के पीछे लगाए हुए। तो कहते हैं हम तो उनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, हम तो बड़ी अच्छाइयां कर रहे हैं। ये बुराइयां करने वाले असल में भलाई के भेस में ही तो धोखा देते हैं। कौन कहेगा जी मेरे पास आ जाओ, मैं कोई गलत कर रहा हूं और मैं आप मेरे पीछे लग जाओ, ये यही तो करते हैं इंसान को। इसीलिए तो अल्लाह ने अकल दी, तुम खुद अकल समझ से देखो, समझो। और यहां पे भी देख ले, बेवकूफ बेवकूफ उनको कह रहे हैं, हालांकि तो खुद बेवकूफी है, लेकिन आज क्या यही सोच हमारी भी नहीं है क्या? अगर हम उस जमाने में होते तो अल्लाह हमें माफ करे, पता नहीं अल्लाह ताला की क्या हिकमत है कि हमें उस जमाने में नहीं पैदा किया। हम कहते तो बहुत हैं कि हाय काश हम उस जमाने में होते, लेकिन पता नहीं हम वहां पे होते तो हमारा क्या हाल होता, हमें तो लगना था ये क्या कर रहे हैं, ये क्या इस्लाम इस्लाम और दीन और इसके पीछे सारा कुछ ही अपना लगाने बैठ गए, ना जान की इनको परवाह, ना घर वालों की, ना घर की, ना बच्चों की, बस अल्लाह रसूल उनसे वफादारियां। ये तो एक्सट्रीमिस्ट ही हैं भाई, हम तो नहीं ऐसी बेवकूफियां कर सकते। क्योंकि जो आज के सिनेरियो में देखें हम, आज तो सहाबा वाले काम ही नहीं है किसी के भी, तब भी हम किसी को कोई ऐसे रास्ते पे चलते हुए देख लेना कि आखरत अपनी बना रहा है, कोई दीन की कोई खिदमत ऐसे कर रहा है, कोई अपना दुनिया का कोई नुकसान उसका हो रहा है और फिर भी वो दीन के काम में लगा हुआ है, तो हमें वो पागल लगता है, कम अकल लगता है। हम कहते हैं इसको तो अपने नफे नुकसान का ही नहीं पता, ये किस तरफ चल पड़ा है, ये क्या इसने शुरू कर दिया, हमें अजीब लगता है, हमें ये पागलपन लगता है, कहते हैं क्रेजी हो गया। वो क्या सोच में कोई कोई चीज भी डिफरेंट है? और फिर देखें जो उनको समझाने वाले वो ये नहीं कह रहे तुम्हारा ईमान तो है ही नहीं, तुम क्या ईमान लाए, ये कोई ईमान है तुम्हारा? देखें हम जब बात करते हैं ना तो हम ऐसे करते हैं, जब हमने दूसरों को समझाना हो, अपने बच्चों को भी हमने इसी तरह समझाया, समझाने का तरीका पकड़ा, ये कोई तुम्हारा ईमान है, ये तुम्हारा ये है, ताने दे के तो नहीं वो कर रहा है। तो वो कहते हैं ईमान ले आओ, देखो कितनी नसीहत करने का भी कितना प्यारा तरीका, ईमान ले आओ जैसे कि लोग ईमान लेकर आए, तुम क्यों नहीं ऐसे ईमान ले आते? उनकी बैशिंग नहीं शुरू कर दी, तुम क्या ये तो मुनाफ़िक है, तुम तो हो ही मुनाफिक, क्या वो नहीं पढ़ते थे ये आयते, तो वो नहीं जाके कह सकते थे हमको? लेकिन आप कहीं नहीं देखेंगे कि पॉइंटिंग फिंगर्स हो रही हो लोग खड़े में और वो कह रहे हैं वो हंस रहे हैं, वो जा रहा है मुनाफिक। टोलियों में खड़े हुए मुनाफिकों की बातें शुरू कर दी, तुम्हें पता है वो फलाना वो, उसके अंदर भी वही चीजें हैं, वो तो है ही मुनाफिक। नहीं, वो उनको अपने आप की ज्यादा फिक्र होती थी, ना कि लोगों के बस पीछे पड़े हुए उन्हीं के फॉल्ट्स निकालते जाना, और नजर ज्यादा दूसरों पे है, अपनी कोई फिक्र नहीं है। ये देखें सारी बातें पढ़ के बहुत कुछ है जो हम अपने कैरेक्टर में सोच सकते हैं कि जिसको हमने सही करना है, और अल्लाह ताला हमारे अंदर से एक-एक चीज मुनाफकत की खत्म करते हैं। मुनाफिक इब्नुल वक्त होता है, चलो तुम उधर को हवाओ जिधर को, जैसा देश वैसा भेस, ठीक है, जो हमने कोई डिफरेंट नहीं होना, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस, वैसे ही बन के चलो, जैसा दुनिया चल रही है उधर ही चलो, वही है तुम क्या अपने अलग ही वो, ये तो बेवकूफी है, ये तो बेवकूफाना पाने ये करना, चलो वैसे ही करते रहो। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह ताला हमें निफाक से महफूज रखना, अल्लाह निफाक को हमारे दिलों से निकाल दे। यहां तक आप लोगों का सबक है, इसको याद करिएगा तर्जुमे को, और उम्मीद है कि एक्सप्लेन करने से काफी अल्फाज आपको अभी याद हो गए होंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون